अल्लाह हू अकबर। व कतबना अलैहिम, और लिख दिया हमने उन पर, किन पर, यहूदियों पर, फीहा इसमें, किसमें, तौरात में। अब देखें आपको यहाँ पे ना कई तौरात के, पहले भी हमने पढ़ा ना कि तौरात में अल्लाह ताला ने ये बता दिया, एक जान को मारना सारी इंसानियत को मार देना, एक को बचाना सारी इंसानियत को, इसी तरह और भी कई तौरात के अहकामात है जो कुरान में आए हैं। और आप आगे देखेंगे कि इसी वजह से कुरान को मुहैमिन कहा गया इन किताबों के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि तौरात में क्या लिखा हुआ था। ये तौरात की बात है, और यही हमारे दीन के अंदर भी बाज चीजें जिनके अंदर हमें और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, तो वो पिछली चीजें ही हमारे पास चल रही हैं। जैसे कि रजम की सजा है, वो कुरान पाक में आपको कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन वो उनके कानून से ही चली आ रही है हमारे अंदर। वो कतबन आलिम, और लिख दिया, लिख दिया मतलब फर्ज कर दिया हमने उन पर। फीहा इसमें, इसमें यानी तौरात में, अन्न नफ्स बिन नफ्सी, के नफ्स के बदले नफ्स, यानी जान के बदले जान। मतलब क्या, जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना कि अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा, तो वो इस तरह से यहाँ पे भी है कि आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, इस हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे है कि जान जान के बदले, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके बदले में वो भी कत्ल होगा, किसास लिया जाएगा। अच्छा, अब आपको ये एक बात बता दूं कि उनकी शरीयत के अंदर सिर्फ किसास था और माफी थी, यानी या तो बदला लिया जाए और बदले में जान के बदले जान, या नंबर टू पे क्या था, या वो मकतूल के वरसा माफ कर दें, बस। हमारे पास तीसरी भी एक चीज है, ये भी है लेकिन थर्ड भी एक चीज है, और वो है दियत, के घर वाले अगर जो मजलूम मकतूल के हैं वो दियत भी कह सकते हैं कि ठीक है हमने किसास नहीं लेना, माफी भी नहीं, लेकिन दियत हम लेंगे। तो फिर दियत हर जान की, एक जान की 100 ऊंट है। तो जान के बदले जान, यानी किसी ने किसी को जानबूझ के कत्ल किया तो वो ये नहीं समझे कि अब मैं एक गेट अवे हो जाऊंगा इससे, यानी अल्लाह ताला के नजदीक जान की कितनी कदरों कीमत है। ये हमने पिछली दफा भी पढ़ा था ना कि तुम जो कोई किसी के ऊपर हथियार उठाने वाला है, किसी को मारने वाला है, वो सोच समझ ले कि आज अगर किसी की जान उसने ली, किसी भी वजह से, किसी दुश्मनी की वजह से, किसी वजह से भी आज किसी की जान ली तो कल को तेरी भी जान जाएगी। आज किसी औरत को बेवा किया क्योंकि तेरी भी बीवी कल बेवा होगी। आज किसी के बच्चे यतीम होंगे तो कल तेरे भी बच्चे रोएंगे। तो जब किसी को ये पता हो ना कि मेरी जान भी नहीं फिर बचनी, तो वो कैसे नहीं बाज आएगा। ये जो कत्लो गारत इतना हमारे यहाँ हो रहा है ना कि पता ही नहीं चलता, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई, मेरा ख्याल में कोई मुर्गी की भी कीमत भी ज्यादा ही होगी, एक गोली की उससे कम है, किसी को भी उठा के मार देते हैं, छोटी छोटी बातों पे मारे जा रहे हैं। कोई हक बात कह के तो देखे उसको, कहते हैं इसको रास्ते से हटा दो। तो लेकिन जब इंसान को पता चलेगा मेरी भी सांस नहीं चलनी फिर उसके बाद, तो फिर खुद ही क्यों नहीं सीधा होगा। तो फिर इससे एक तो ये बात पता चली कि जान का बदला जान है। वल आईन बल आईन, अब लिम्स का भी बताया जा रहा है, डिफरेंट लिम्स का, आंख है, नाक है, कान है, इन सारों का बताया जा रहा है कि उसका भी बदला वही है जो जो किसी ने दूसरे के नुकसान दिया, जितना दिया उतना उसके मुताबिक उसका बदला उसको दे। आंख के बदले आंख, किसी ने किसी आंख फोड़ी उसकी आंख फोड़ी जाए, किसी ने किसी नाक काट दी या हड्डी तोड़ दी नाक की उसकी भी तोड़ी जाए, किसी ने किसी का कान काटा या उसको नुकसान दिया उसका उतना ही दिया जाएगा, दांत तोड़ा उसका दांत उतना ही तोड़ा जाएगा। और इससे बताया गया कि अल्लाह ताला के नजदीक जो नुकसान देने वाला है या जो कातिल है या जो ये काम करने वाला है उसके साथ हमदर्दी नहीं है, मजलूम के साथ है, अल्लाह उसके साथ है। अगर आज कोई किसी को पूछता नहीं है, बेचारे लोग रोते फिरते हैं, अपने मुकदमे ले लेके भुगतते फिरते हैं, कहते हैं छोड़ो ही, जितने पैसे हमने यहाँ लगाने हैं तो घर में ही बैठ जाओ चुप करके, कहां से इंसाफ मिलना। लेकिन याद रखो अल्लाह के हाँ ये कानून है, अगर किसी को नहीं मिल रहा याद रखें अल्लाह उसके साथ है। ये जराइम पेशा लोग बच्चों को अपाहज कर देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं उनके हाथ पैर, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, अगर उनको पता चले कि इनके भी इसी तरह आंखें फोड़ी जाएंगी और किया जाएगा तो कभी करेंगे बताएं। आपको मैंने वो चरवाहों का बताया था, उन्होंने पता बाज जगह पे आता है कि गर्म सलाइयां उनको चरवाहों की आंखों में फेरी थी, तो चरवाहों के जो ये मुजरिम थे इनके भी ऐसे ही किया गया था, उसके बाद फिर उनको मारा गया था। यानी ये किसास है, ये ऑर्गन्स का जो आपके लिम्स हैं इनका किसास है। ये भी ऐसे गेट अवे नहीं कर सकते कोई किसी को भी मुक्का मार के दांत तोड़ के और उसको कह दे कि मैं तुझे सही करता हूं, तो उसकी जरूरत नहीं होगी अगर ऐसा इंसाफ होने लगे। ताकि हड्डियों तक का है, अगर कोई किसी की हड्डी तोड़ेगा तो उसका भी। अब ये क्या गली मोहल्लों के अंदर बच्चों की लड़ाइयां हो गई और उसके अंदर ही किसी ने किसी को हड्डी तोड़ दी, किसी को आंख फोड़ दी, सारी जिंदगी के लिए उसको अपाहिज कर दिया। बल्कि बाज दफा ऐसा होता है कि लोगों का ऐसा नुकसान कर देते हैं आजा का कि वो कभी सही नहीं हो सकते, और वो कहते हैं इससे बेहतर हम मर ही जाते, इतनी उनका बड़ा नुकसान कर देते हैं। मतलब किसी की बसारत ही चली गई, किसी आंखें ही चली गई, तो ये छोटी बातें नहीं है और इसको कुछ समझा ही नहीं जाता। वल जुरूहा किसास, और जख्मों के भी किसास हैं, जख्मों का भी बदला उतना ही होगा। सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है अल्लाह ताला को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है कि कोई बदअमनी फैलाने वाला, कोई शर पसंद अगर इस तरह की हरकत करे तो उसको भुगतना पड़ेगा। तुम अल्लाह के बंदों को बेचैन करके, उनके सुकून लूट के खुद भी सुकून से नहीं बैठ सकते। लेकिन आप याद रखें, जिन माशरों के अंदर ये सजाएं राइज हो जाए ना, वहां पे फिर इस तरह के क्राइम होने यानी क्लोज टू जीरो हो जाते हैं। इसलिए कि लोगों को डर होता है ना। अब जिन मुल्कों में आज भी दुनिया में आप देखें, जहां पे चलो सऊदी अरब वगैरह में पूरी तरह तो नहीं सारी शरीयत नाफिज, लेकिन जितनी हद तक भी है आप देख लें वहां का क्राइम रेट, और दूसरी जगहों का देखें आप। तो इसलिए ये चाहे कोई औरत ने किसी के साथ ऐसा किया है, चाहे मर्द ने किया, ये नहीं देखा जाएगा औरत ने किया, हाय बेचारी औरत, हाय गरीब आदमी था, छोड़ो इसको, नहीं, बदला देना पड़ेगा क्योंकि खून सबका बराबर है। तो इसमें किसी को ये नहीं कहा गया कि जो अमीर को मारे तो फिर अमीर को मारने की जगह गरीबों के दो मारे जाएंगे, हमारा तो यही कानून चलता है ना। और अगर अमीर किसी गरीब को मार दे तो अमीर को कौन हाथ लगाए, उस अमीर को तो वो तो हथियार लहराते हुए चले जाए, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम में ये नहीं है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो हाई स्टेटस वाला है और वो लो स्टेटस वाले हैं, वो कच्ची बस्ती में रहने वाला है इसलिए उसका खून तो कुछ है ही नहीं है, इन गरीबों के तो रोज ही मरते रहते हैं, वो अपने जनाजे ले लेके सड़कों पे रखते रहे, वो दुहाइयां देते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, ये तो कोई बात नहीं, इनका तो मरना ही चाहिए, तो ये क्या चीज है, ये तो हमारी सोच होती है, वो तो हमें कुछ लगते ही नहीं कि इनका भी खून कोई खून है। नहीं, नफ्स बिन नफ्स। लेकिन वही बात है, जब ये कवानीन ही नाफिज नहीं, तो आज वो हाल आ गया कि ना कातिल को पता है कि वो क्यों कत्ल करता है, ना मकतूल को बेचारे को पता है कि मुझे कत्ल किस बात पे किया गया, मेरा कसूर क्या था। तो जब जाओगे ना अल्लाह के कानून से दूर, आप भागते हो ना, आप सोचते हो कि और हाय पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने ये नाफिज कर दिया। वलकुम फिल हयाती या उलिल अलबाब, वलकुम फिल किसासी हयात या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए तो किसास में जिंदगी है अकल वालों, अगर तुम्हें अकल हो तो तुम्हें पता चले इसमें तो जिंदगी है तुम्हारे लिए, पूरा माशरे को तुम सेव कर लोगे, अमनो अमान आ जाएगा, चैन आ जाएगा तुम्हारे माशरों में अगर ये कानून नाफिज करोगे। तुम पता नहीं किन सोचों में हो, सोचते हो क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा, सुकून आ जाएगा, अमन आ जाएगा। और जितना भागोगे इन चीजों से तो फिर वही हाल है जो आज हम देख रहे हैं। फमन तसद्दका बिही फहुवा कफारतुल्लाह, और जो कोई सदका कर दे, सदका कर दे मतलब क्या, अगर मजलूम को भी अल्लाह ने इंसेंटिव दिया कि अगर मजलूम ऐसा है वो देखता है कि ये बंदा यानी हो सकता है इसकी सलाह हो जाए, ये बेहतर इंसान बन जाए, आज इसने ये कर दिया उस वक्त जज्बात में आके या कुछ है, वो उसको माफ कर देता है मसलन, तो क्या होगा, ये जो मजलूम है ना इसके लिए गुनाहों का कफारा बन जाएगा। यानी अगर किसी ने किसी के कोई जख्म दिया है, तो जितना जख्म दिया है और उसके ऊपर उसने उसको माफ कर दिया, तो उसके उतने ही गुनाहों का कफारा ये बन जाएगा। समझ आई बात, जितना ज्यादा बड़ा जख्म था
उतनी उसने माफी का वो किया तो उतनी ज्यादा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये पता चलता है हमें कि जख्मी के लिए कफारा है, यानी उसके गुनाह उसी जख्म की मिकदार से अल्लाह ताला बख्श देंगे, जितनी यानी बड़ी चोट लगी है उसके मुताबिक की गुनाह भी माफ हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के जिस्म में कोई तकलीफ पहुंचाई जाए और वो सबर कर ले, बदला ना ले, तो अल्लाह उसके दर्जे बढ़ाता है और उसकी खताएं माफ कर देता है। तो इसी तरह एक हदीस में है कि जो शख्स खून या उससे कम को माफ कर दे, वो उसकी पैदाइश से लेके मौत तक का कफारा होगा। ठीक है, कि किसी ने किसी का खून माफ कर दिया तो इतना बड़ा कफारा उसको मिल गया, क्योंकि ये इजी चीज नहीं होती। तो उसको भी इंसेंटिव दिया गया, वमन लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फौलाइक हुमुल ज़ालिमून, तुम जालिम ही तो हो अगर तुम अल्लाह के फैसले उतर जाने के बाद फिर भी उसके मुताबिक फैसला नहीं करते तो तुम जालिम ही तो हो। जालिम कौन होता है? जो हकदार को हक नहीं देता। तो जब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसला ना किया जाए और कोई और मुताबिक फैसले किए जाएं, तो कभी भी हकदार को उसका पूरा हक नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह है जो हक दिलाने वाला है। तो अब ये समझ आ गई कि फिर ये कानून किन की किताब में था? यहूद की। और ये कानून हमारे लिए भी है, सेम बिल्कुल। अब उनके पास किसास और माफी, हमारे पास किसास माफी और थर्ड चीज दियत। अल्लाह अकबर। वकफ़ैना अला आथारिहिम बी ईसा बनी मरियम, और पीछे भेजा हमने अला आथारिहिम, इनके आसार के ऊपर, किन के? जो मूसा अलैहि सलाम के बाद पैगंबर आए, यानी जिन पैगंबर को ये यहूदी मानते हैं, उनके बाद बहुत सारे पैगंबर आए, मैंने आपको बताया, उन्हीं के आसार पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के पीछे, आसार का मतलब यानी उनके पीछे, उनके पीछे ही हमने भेजा, उनके आसार पे हमने भेजा ईसा इब्ने मरियम को। कि ईसा इब्ने मरियम भी वैसे ही यानी नबी थे जैसे कि वो पहले जो गुजर चुके हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पे थे, उन्हीं के तरीके पे थे। समझ आई? तो यानी इसका मतलब है कि ईसा अलैहि सलाम की और पिछले अंबिया की हिदायत में, तालीमात में, उनके मतलब जो मकसद था उनका, दावत का, उसमें कोई फर्क नहीं था, सब एक ही नक्शे कदम पे चलने वाले थे। तो आखिर में पिछले रसूलों के बाद इस बनी इसराइल के इसमें कौम में हमने ईसा बिन मरियम को भेजा, जो मुसद्दिक लिमा बैना यदैही मिन तौरात, जो तस्दीक करने वाले थे उसके जो उससे आगे है तौरात में, यानी तौरात में जो कुछ है ईसा अलैहि सलाम के वो सामने था, उन्होंने उसको वेरीफाई किया कि हाँ ये तौरात सही है, ये तौरात कानून है। आपको पता है तो इंजील के अंदर तो कोई नया कानून नहीं आया था, बल्कि वो ही तौरात का कानूनी इंजील में भी फॉलो हुआ है। उनको भी कहा गया, फॉलो तो नहीं हुआ, मतलब ईसाइयों को भी कहा गया कि वो तौरात का ही कानून फॉलो करें। इंजील में तो हिकमत थी, कवानीन की हिकमत वगैरह थी, ये बातें थी, मौइज़ा थी। वह आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको इंजील दी, फी हुदम व नूर, उसमें भी हिदायत और नूर है, यानी उस जमाने के लिए उसमें भी नूर था और हिदायत थी। और मैंने आपको अभी बताया कि हिदायत क्या करती है और नूर क्या है, और हिदायत का नाम भी ना बार बार आएगा, तो हम एक दफा ही इसको समझ लें कि ये कुरान भी हिदायत है, वो भी हिदायत थे, तो हिदायत में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो याद रखें, हिदायत का माना रास्ता दिखाना भी है, रास्ते पे चलाना भी है, मंजिल तक पहुंचाना भी है। रास्ता इटसेल्फ को भी हिदायत कहते हैं, दिलों के इत्मीनान को भी हिदायत कहते हैं, जैसे सूरह कहफ में आपने पढ़ा, असहाबे कहफ के बारे में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर दिल की मजबूती को भी हिदायत कहते हैं, ये सारे माने हिदायत में शामिल है, यानी रास्ते पे चलाना, शरीयत को इख्तियार करना, मंजिल तक पहुंचाना, वो रास्ता जो मंजिल तक लेकर जाए, मंजिल पे पहुंच के जो इत्मीनान हासिल होता है वो भी हिदायत है। हम जो इहदिनस सिरात मुस्तकीम मांगते हैं, हिदायत ही मांगते हैं ना अल्लाह से, तो हम ये सारी चीजें मांग रहे होते हैं, तो इसमें सब कुछ आता है। तो हमने उनको इंजील अता फरमाई, فی ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور، وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ بھی تصدیق کرنے والی ہے انجیل بھی جو اس سے آگے ہے، اس سے آگے مطلب جو اس سے پہلے گزر گئی ہے تورات میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ بھی تصدیق کرتی تھی، یعنی کیونکہ دیکھیں سورس تو ایک ہی ہے نا، ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جب اگر ڈفرینٹ طرف سے آتی ہوتی تو پھر ڈفرینٹ باتیں ہوتی، کسی میں کچھ ہوتا کسی میں کچھ، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک ہی ایک کتاب آتی ہے تو دوسری آئی تو اس نے اس کی تصدیق کی، قرآن بھی آیا تو اس نے دوسری کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ ہاں تورات اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ باقی صرف ویدا بھی اور گیتا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ان کی کتابیں ہیں وہ ساری بھی اللہ کی طرف سے ہی اتری ہوئی ہیں، تو یہ تو ان کے بارے میں تو نہیں کہا قرآن نے. ہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انبیاء کے اوپر صحف آئے، مگر ان لوگوں کو ہم اہل کتاب نہیں کہتے. یاد رکھیں جب بھی قرآن میں اہل کتاب کا آئے گا تو یہود و نصارہ ہی ہیں ان سے مراد، کوئی اور کو بھی، وہ بھی تو وہ کہیں ہم بھی تو کتاب رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے. اب کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ ہمارے پاس جی یہ ہماری گیتا ہے تو ہم بھی تو کتاب والے ہو گئے، نہیں ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اچھا اب مصدقن کے کیا معنی ہے؟ مصدقن کا دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ تورات میں لکھا تھا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح آئے گا جو تمہیں مطلب اس ذلت سے رسوائی سے نجات دلائے گا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور یہ سب، اور تو یعنی ان خبروں کا مصداق بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جو خبریں دی گئیں ان کو وہ آ کے بتائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بھی تصدیق کی آ کے بھی، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی ویسے کا ویسے ہی نافذ کیا، تو پھر تصدیق ہو گئی نا، دونوں طرح سے تصدیق ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سوری عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی اور تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک مسیح آئے گا. تو یہ جو انجیل بھی آئی اس نے بھی تورات کی تصدیق کی ہے، اور ہدم و موعظہ اور ہدایت اس میں بھی، اور نصیحت للمتقین متقین کے لیے، یعنی اس میں بھی انجیل میں ہدایت کا سامان بھی تھا اور موعظہ بھی تھا. موعظہ اب نیا چیز آئی ہے یہاں پہ، موعظہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات جو دلوں کو، واعظ کہتے ہیں اس بات کو جو دل کو نرم کر دے، تو اس میں موعظہ بھی تھا، اس میں حکمت تھی، اس میں واعظ تھے، دلوں کو نرم کرنے والی باتیں تھیں. آپ دیکھیں اس وقت بھی اور آج تک بھی یہودیوں کے دل بڑے سخت ہیں، صرف ان پہ عمل کرنا نا، جو اس پہ سختی سے عمل کر رہے تھے اس کی روح کو نہیں جانتے، ان کے اندر بھی کوئی روحانیت والی بات نہیں ہے. تو ان کے پاس جو کتاب آئی جو دل میں اتر جانے والی باتیں تھیں وہ اس میں تھی انجیل میں. تو اب انجیل کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انجیل کی تھوڑی سی ہسٹری آپ سن لیں کہ انجیل کا بھی کیا بنا. اصل میں انجیل اللہ کی طرف سے کتاب آئی، لیکن ہمیں کہیں یہ ایویڈنس نہیں ملتا، کہیں پہ بھی ہمیں یہ پروف نہیں ملتا کہ انجیل کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی. بعض تو کہتے ہیں کہ لکھی ہی نہیں گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ جب یہ کتاب اتری ہے تو ان کے وقت کے اندر کسی نے بھی نہیں لکھی یہ کتاب. دیکھیں ان کے وقت میں تو صرف 1250 کے قریب لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، لیکن وہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اوپر اٹھا لیے گئے اس کے بعد بھی یہ لوگ چھپتے چھپاتے رہے، یہ اوپنلی اپنے دین کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ ہمیں اب ہمارے اوپر کچھ آفت آ جائے گی، ظاہر ہے ان دوسروں کا ہولڈ تھا یہودیوں کا اور یہ سب، تو کوئی جگہ یہ اپنے لیے سیف نہیں محسوس کرتے تھے. اور اسی طرح 300 سال گزر گئے کہ یہ بس عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو سچے پکے ماننے والے تھے وہ اسی طرح چھپ چھپاتے ہی رہے. تو انجیل تو پھر کیا رہ گئی انجیل سوائے چند ایک آیات کے جن کو اللہ نے محفوظ کرا، اس کے علاوہ تو بس زبان سے ہی تھی نا جو کہتے ہیں کہ نہیں لکھی گئی. پھر جب کانسٹینٹینوپل کا قسطنطنیہ کا بادشاہ جب وہ عیسائی ہوا تو پھر مذہب کی آزادی ان کو ملی تھی، پھر ان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملا. تو جس مذہب کا یہ حال ہو کہ خفیہ طور پہ ہی لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہوں اور وہ خوف میں ہمیشہ رہتے ہوں، तो वो फिर कैसे अपनी बुक को प्रिजर्व रख सकेंगे? तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो इवन ईसाई भी ये बात मानते हैं, ये हम नहीं कहते, ये ईसाई भी ये बात मानते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो गॉस्पेल है ये ईसा अलैहि सलाम ने अपने हाथों से नहीं लिखी थी, ना ही उनकी जिंदगी में लिखी गई है। हाँ, यहूदी जरूर कहते हैं, वो कहते हैं हमारी तौरात ये वही है जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। ईसाई नहीं ये कहते कि ये वो वाली बुक है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, बल्कि ईसाई मानते हैं इस बात को, ये बाद में लिखी गई थी। ईसा अलैहि सलाम के एक हवारी थे, 9 साल बाद ईसा अलैहि सलाम के ऊपर जाने के उन्होंने लिखी थी गॉस्पल। 4 गॉस्पल्स है ना, तो दूसरी जो पीटर ने 22 ईयर्स के बाद लिखी थी, जिसको मार्क भी कहते हैं। तो पहली गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है, फिर ऑफ मार्क है, फिर गॉस्पल ऑफ ल्यूक है, फिर गॉस्पल ऑफ जॉन है। तो ये भी बाद में लिखी गई, ये 4 गॉस्पल्स हैं। तो वो नहीं कहते ये वर्ड ऑफ गॉड है। हाँ, आगे आगे चलती गई जो बातें जितनी उनको याद रही, ये नहीं हम कह सकते कि उसमें कुछ भी नहीं है जो अल्लाह की तरफ से था। नहीं, जाहिर है जो जो बातें उनको याद रही वो आगे लिखते गए, मगर इतनी दफा इसको जो अव्वल तो ओरिजिनल जुबान में ही नहीं लिखी गई, जिसको कहते हैं कि हिब्रू लैंग्वेज थी। तो और फिर ये भी नहीं पता चेन्स का क्या हाल है, आगे से आगे जब आगे बताते गए तो फिर क्या हाल हुआ। फिर उसके बाद जो ट्रांसलेशंस भी जिन्होंने की, वो उनका भी नहीं हाल पता कि उनका इल्म कितना था, उनका तकवा कितना था, उनके अंदर दयानतदारी कितनी थी, ये भी नहीं पता। और मतलब जितनी रिसर्च हुई है आज तक, यही पता चला कि कोई सबूत नहीं है इस बात का कि इंजील क्या ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में लिखी गई थी। अगर लिखी गई थी तो किसने लिखी थी, और किसने फिर उसको महफूज किया था, और क्या ईसा अलैहिस्सलाम लिखवाते थे? तो दूसरे तो कहते हैं कि लिखी ही नहीं गई थी और बाद में ही लिखी गई है। और शेख अहमद दीदात का ही है ना वो, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड्स, तो उनमें उन्होंने लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम ने तो सारी जिंदगी कोई एक लफ्ज भी नहीं लिखा, और ना ही इन्होंने किसी को लिखने का कहा। हाँ, ये पता चलता है कि वो लिखना पढ़ना जानते थे, जो हमें सूरह आल इमरान से भी पता चला, मगर ये नहीं मतलब हमें ये पता कि वो उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में लिखवाई थी। ज्यादातर तो यही है कि नहीं लिखवाई थी। तो अब जो गॉस्पल है वो कहते हैं कि ये ईसा अलैहि सलाम के अकवाल हैं, जो जो उनको बातें याद थी कि वो उन्होंने ये फरमाया ये फरमाया ये फरमाया, तो वो सारी उन्होंने लिखी है। इसी तरह उनके आमाल हैं, इसी तरह उनके मोजजात हैं। तो समझ लें कि ईसा अलैहि सलाम की सीरत है और ईसा अलैहि सलाम की अहादीस है, ये हैं उसके अंदर आज जो गॉस्पल है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ताकि इसका पता चल जाए। तो वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अनजल अल्लाह फी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाहिए कि अहले इंजील भी उसके मुताबिक फैसला करें जो उनके पास है, जो उनको अल्लाह ने नाजिल कर उसके मुताबिक वो फैसला करें। लेकिन व मल्लम यहकुम बिमा अनजल अल्लाह फौलाइक हुमुल फासिकून, जो अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला नहीं करते या नहीं करेगा, वो फासिक है। तौरात और इंजील रख के भी इन्होंने अपने कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं किए, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी तौरात ही कानून था। हर दौर में अल्लाह ने कुछ ना कोई किताब नाजिल की, और इसलिए नहीं नाजिल की कि भाई लोग उनको किताबों को रख लें अपने पास और उनको पढ़ते जाएं और उनको बस सीखते जाएं और उनको समझते जाएं और बस उसके बाद कुछ भी नहीं, बल्कि इसलिए कि नाफिज करें, उनको अप्लाई करें। ये अप्लाई करने के लिए है, इंडिविजुअल लाइफ्स में भी और अपनी पूरी सोसाइटी में भी। अपनी देखें आप, अगर हदीस की आप किताबें उठा के देखें तो तिजारत के लिए, यानी आप बिजनेस जो करते हैं उसके लिए अलग बाब है, उसके अंदर इतनी अहादीस हैं। आपकी कोई चीज गिरी पड़ी आपको मिल जाए तो उसके लिए अलग बाब है कि आपने क्या करना है। ईमान का अलग बाब है। आप यानी जितने मामलात जिंदगी के हैं ना, उनके अलग अलग बाब हैं जिसके अंदर इतनी अहादीस हैं, जिसमें हमें रहनुमाई मिलती है कि इस मामले में हम क्या करें। तो आपकी चाहे रिश्तेदारियां हैं, चाहे आपकी शादियां आपने करनी हैं, चाहे तलाकों के मामलात हैं, चाहे गम के दिन हैं, चाहे खुशी के दिन हैं, चाहे कोई फौत हो जाता है, चाहे आप कोई जॉब शुरू करने लगते हैं, चाहे अपने माशरे में रहने के आदाब सीख रहे हैं, सब चीज में اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے زندگی کے فیزز میں، اس میں اپلائی کرو اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. جن کے پاس تورات آئی وہ اس کو کریں، جن کے پاس انجیل آئی اس کو کریں، جن کے پاس قرآن آیا وہ اس کو نافذ کریں. تو جو کہے کہ میں مانتا ہی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے، اور میں تو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آج کی 21st سینچری کے مطابق ہی نہیں سمجھتا، اور یہ تو نہیں اپلائی ہو سکتا، اور یہ تو ظالمانہ چیزیں ہیں، یعنی یہ تو ہمیں بیکورڈ لے جائیں گی. ہم اس زمانے کے 1400 سال پرانی چیزیں آپ ہمیں کہہ رہے ہو. تو وہ فاسق ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، حد سے زیادہ نکلنے والا، ریبیلیس. ہاں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو ریبیل کرتا ہے، باغی ہے اللہ کا. تو باغیوں کا انجام پھر کیا ہوگا؟ اور یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ اب یہ آیت 3 دفعہ آ گئی. ایک دفعہ کہا گیا آیت نمبر 45 میں کہ وہ ظالم ہے، ایک دفعہ اس سے پہلے کہا گیا آیت 44 میں کہ ایسے لوگ کافر ہیں، اور اب آیت 47 میں کہہ دیا گیا ایسے لوگ فاسق ہیں. اللہ نے 3 ٹائٹل دے دیے ان لوگوں کو، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. سوچ لیں کہ پھر ایسے بندے کا کیا انجام. ہاں ایک بندہ کوشش کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، اپنی طرف سے لگا ہوا ہے، کمیاں کوتاہیاں پھر بھی رہتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر ہی ہم اچھے ہیں، انگریز کا قانون ہی اچھا ہے، ویسٹ کے قوانین ہی اچھے ہیں، تو وہ کدھر منہ دکھائے گا پھر؟ ہمارے تو اسلامی قوانین تو ایسے ویسے ہیں، اس کے اوپر ناک منہ چڑھاتا ہے. وہ کسی جگہ بھی نہیں اس کو اپلائی کرنا چاہتا، تو نہ وہ پسند کرتا کہ ہمارے ملک میں نافذ ہو، نہ وہ پسند کرتا کہ مجھے میری زندگی میں نافذ ہونے چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں. کتابوں میں پڑھے رہیں، پڑھتے رہیں، آپ جتنا مرضی پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، چلو اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں نافذ نہ ہو، یہ اس کی تکلیف سب کو ہے. جو غیر مسلم ہے اس کو تو ہے ہی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے تو سنی سنائی باتیں سن کے وہ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز کہہ رہے ہیں یہ، اور اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ مسلمان کون سے کام ہے؟ تو کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں. یہ لیڈر ہے، یہ فیصلے کرتی ہے، یہ حاکم ہے، سیدھے راستے پر لے کر چلے لوگوں کو، ہدایت دینے کے لیے آئی تھی. ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ دلہنوں کے سروں پہ رکھ کے ان کو رخصت کرنے کی چیز، گھر نیا خرید لیں تو اس میں پڑھنے کی چیز، قرآن خوانیاں کرانے کی چیز، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت پڑھنے کی چیز، وظیفے کرنے کی چیز، جادو ٹونے بھی لوگ اسی سے کرتے ہیں، یا تعویذ لے کے بنا کے لٹکانے کی چیز، یہ بنا لیا اس کو. یہ تو حاکم تھی، اس کا تو حکم چلنا تھا ہماری ہر زندگی کے فیز میں، کھانے پینے سے لے کے شادی بیاہ سے لے کے مرنے جینے سے لے کے ہر چیز میں تھی یہ، اس کے فیصلے چلنے چاہیے ملک کے قانون سے لے کے انڈیویجل زندگیوں تک. لیکن کہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ؟ کہیں پہ بھی تو نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں، کسی ملک میں. کون سا تو دوسروں کو نہیں ہم کہتے، اس لیے وہ تو ہیں ہی، اس کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کافر ہی ہیں. مجھے ایک اسلامی ملک بتا دے جس میں یہ نافذ ہو، ایک اسلامی ملک بھی بتا دے. نہ اکنامکس میں نظر آتی ہے، نہ ٹریڈ میں نظر آتی ہے، نہ کسی جگہ پہ بھی نہیں نظر آتی. گھروں سے تو ویسے ہی جنازے اٹھ گئے ہیں اس دین کے، جہاں پہ لوگ ناچنے تھرکنے والی عورتوں کو دیکھیں سارا وقت، اور یہی مسئلے رہ جائیں، اور بے حیائیاں اور شر عام ہو جائے. وہاں پہ کیا ہے؟ حرام کھائے جائیں اور جھوٹ بولے جائیں اور دھوکے دیے جائیں، وہاں پہ کون سا اسلام ہے؟ ہم سوچتے ہیں بس نمازیں پڑھ لی، بس اتنا کافی ہے. اللہ نے کتاب اس لیے تو نہیں بھیجی کہ بس آپ نماز پڑھ لیں. اسی لیے تو بیچارے لوگ جن کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تو آپ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ نماز پڑھنی تو ہمیں بھی آتی ہے. ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے ان کو قرآن سکھا کے کوئی نماز پڑھنی سکھانی ہے. نہیں، یہ تو حاکم ہے، اس کا حکم چلے گا زندگی کے اندر. اگر اس کو حاکم ہی نہیں بنایا تو کیا ہے پھر؟ یہ ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، यानी लोग है ना इस्लाम की ये कड़ियां हैं, समझ लें जैसे चेन होती है उसमें से आपने कड़ियां देखी है ना चेन में, तो उस तरह के वो सर्कल्स होते हैं, तो एक कड़ी के बाद एक कड़ी टूटेगी, तो जब भी कोई एक कड़ी टूटेगी तो लोग उससे नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे, समझे, एक टूटेगी तो दूसरी को पकड़ लेंगे। तो आप सरसर ने फरमाया जो सबसे पहली कड़ी टूटेगी तो वो ये है कि अल्लाह के कानून की जगह गैर का कानून आ जाएगा, गैर अल्लाह का कानून लोग उसको फॉलो करेंगे, अल्लाह के कानून को एक तरफ रख देंगे। और आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो ये है कि नमाज पढ़ना लोग छोड़ देंगे, नमाज आखिरी कड़ी है, यानी इसके बाद तो फिर पूछे कोई इस्लाम ही नहीं रह गया, कोई इस्लाम नहीं रह गया। और आज हमारा हाल ये है कि वो जो आखिरी कड़ी है ना उसको हमने जरा सा पकड़ा हुआ है, तो हम अपने आप को बहुत ही नेक समझते हैं। हाँ मुझे तो हैरत होती है कि लिखते हैं सोमो सलात के पाबंद, भाई सोमो सलात के पाबंद तो इस मुसलमान को वैसे ही होना चाहिए, इसमें कौन सी कमाल की बात हो गई, आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वो भी नमाज रोजा कर लेता है, भाई बहुत बड़ी बात हो गई, वो सोचता है मेरे से ज्यादा कोई अच्छा मुसलमान ही नहीं, हम भी उसको पता नहीं नेक पारसा कितना समझते, हालांकि वो तो एक अदना तरीन मुसलमान होगा जिसने सिर्फ नमाज और रोजे को पकड़ा, इस्लाम तो इससे ऊपर है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट गई तो फिर तो कोई दीन ही नहीं रह गया, और आज कितने लोग हैं नमाज छोड़े में, तो किधर चल रहा है ना, इबादत में दीन चल रहा है ना किसी और चीज में दीन चल रहा है, हमने अपनी अपने रस्म रिवाज करने हैं भाई, हम अपने माशरे के मुताबिक चलेंगे, हमारे जहां पे जो चीज अच्छी समझी जाती है वो करेंगे, जो आज के ट्रेंड्स हैं उस पे चलेंगे, इस्लाम को कौन फॉलो कर रहा है, तो बैकवर्ड है ये, आप आम सुनते नहीं है। तो इन्हीं के बारे में कहा गया ये फासिक है, जालिम है, काफिर है, जो ये कहें कि ये बैकवर्ड है, ये नहीं हमारे काम का, आज हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम अपने ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, हमारी जो फैशन, हमारी जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग चीज है उसको हम फॉलो करेंगे, आम लोगों के यही ख्याल आता है। ठीक है आप लोग कुछ नहीं भी कर सकते ना, कम से कम अपनी अपना माइंड सेट स्ट्रेट करें, अपनी सोच को स्ट्रेट करें कि यही है हमारे लिए निजात, अगर हमने इस किताब को अपना हकम ना बनाया, और हम कम से कम अपनी जिंदगी में तो बनाएं, तो अगर हमने इसको हकम ना बनाया, जहां तक हमारी हमारी ताकत है, जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमारा इख्तियार है, कम से कम उस तक तो बनाएं, अगर नहीं बनाया तो फिर किन में हम शामिल हैं। और उसके बाद हम ये भी देखें कि हमारे से बाहर भी जब इस किताब को इंप्लीमेंट करने की बात की जाए, तो हम ये ना कहें हाय 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 ये आ गया इस्लाम आ गया तो फिर क्या होगा, हम कहें कि नहीं शरीयत, हमारी शरीयत में ही तो हमारे लिए निजात है, ये अल्लाह का कानून है, उससे बढ़ के किसका कानून हो सकता है, हमारी तो सार आंखों पर, उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती चीज, ये हमारी माइंड सेटिंग होनी चाहिए, ना कि हम घबरा जाएं और फिर हम सोचें पता नहीं हमें तो कैद ही लगने लगी है, जैसे जैसे हमारे गले में कोई फंदा डालने लगा, यकीन जाने कई मुसलमानों के ये हाल है कि जब वो ये शायद आयतें भी सुन रहा हूं तो सोचेंगे कैसे, आइए अगर वाकई ऐसा हो गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, इसलिए होता है ना क्योंकि अपने अंदर चोर है, ऐसे ही है जैसे कि वो जब कहने लगे कि भाई जो लोगों की आजकल सारी चेकिंग हो रही है, तो जो चोर है उसको ही लगेगा ना कि हाय हाय मेरा क्या बनेगा, जो क्लीन है लोग, जो कुछ नहीं करते, जो सीधा अपना सारे मामला स्ट्रेट रखते हैं, कहते हैं चेक कर लें जो मर्जी चेक करना, हमारी सब चीजें स्ट्रेट हैं, तो जिनको अंदर चोर है ना उनको पता है कि हमसे तो नहीं ये बर्दाश्त होता, वो फिर उनको परेशानी शुरू हो जाती है, फिर उनको डर लगने लगता है कि वाकई अगर आ गया ये सारा कुछ तो फिर हमारा क्या बनेगा। वअंजलना इलैकल किताबा बिलहक, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ इस किताब को, पहले किताबों की बात हो गई ना, अब तौरात भी आई अल्लाह की तरफ से, इंजील भी आई अल्लाह की तरफ से, अब आपकी बारी, अब आपके ऊपर आई ये किताब कुरान बिल हक, साथ हक के आया, ये यकीनी चीज है, ये सच है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैहि मिनल किताब, ये है जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो इससे पहले आई है किताब में से, यानी तौरात और इंजील की, मैंने आपको बताया ना कि ये उनको वेरीफाई करती है, ये बताती है, ये किताब बताती है कि उनमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं और कौन सी बातें हैं जो उन लोगों ने लिख दी हुई लेकिन वो सही नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अब ये अब जो आ गई ये किताब तो महफूज है, वो किताबें महफूज नहीं रही, उनके अंदर डिफरेंट चीजें शामिल हो गई, तो अब आप इसके जरिए वेरीफाई कर सकती हैं, कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कि हाँ उनमें कौन सी चीजें हैं जो कि बाद में ऐड हुई हैं। इसीलिए हमें बताया गया कि अगर उनमें से कोई चीज ऐसी है जो कुरान के खिलाफ है तो हमने उसको नहीं मानना, और उनमें कोई ऐसी चीज है ना जो कि कुरान के मुताबिक है तो हम मानेंगे कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से, इतनी बातें हम उसमें से भी मानते हैं, उनकी किताब में से भी वो सारी बातें हम मानते हैं जो वाकई कुरान में भी हैं और कुरान उनको वेरीफाई करता है, और कोई ऐसी चीजें कि ना जो खिलाफ है ना जो हक में है, तो फिर उनके बारे में हम खामोश होते हैं, ना उनको सच कहते ना झूठ कहते हैं। और हमें फिर इजाजत है कि हम इसराइली रिवायात को फिर हम कोट भी करते हैं, वह मुहैमिन अलैहि, तो और ये निगहबान है, हिफाजत करती है, ठीक है, ये हिफाजत करती है उनकी, यानी अब आपके पास ये ओरिजिनल वर्जन मौजूद है, समझ लें कि वो डिस्टॉर्ट हो गई, ठीक है, वो उनके अंदर रद्दो बदल हो गया, अब आपके पास जब ओरिजिनल चीज आ जाती है ना तो आप क्या करते हैं, फिर ओरिजिनल रख देते हैं सामने और फिर आप एक एक चीज चेक करते हैं, मतलब आपके पास कोई पेपर आ गए, आंसर की आ गई, अब आप देख सकते हैं किसने क्या क्या गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अब आपके पास आंसर की है, अब लोगों ने मतलब डिफरेंट पेपर्स लोगों के आप चेक कर रही हैं, आपके पास आपको एक आंसर की दे दी गई, तो आप इस आंसर की को देख देख के उनके चेक करेंगी ना कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हुई, ये तो था ही नहीं, ये तो जवाब ही नहीं था, आप उसको क्रॉस आउट कर देती हैं। इसी तरह जब ये कुरान आ गया, ये कंप्लीट वर्जन आया अल्लाह की तरफ से लेटेस्ट, इसको सामने रख के जब उनको चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कितनी चीजें लोगों ने ऐड की थी, क्या ये हिफाजत करती है, ये उनकी भी मुहाफिज है, उनकी भी निगेबान है, वो इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया है जो कि पिछली किताबों में से लॉस्ट हो गया उसको भी रिस्टोर करती है, ठीक है। अब जैसे ये जो किसास की सारी बात है इसके अंदर के भाई कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, अगर ये उसके अंदर नहीं है तो ये बताती है कि उनकी किताब में ये भी था, फाहकुम बैनहुम बिमा अंजलल्लाह, बस अब देखें पहले भी बात आई उनको अहलुल इंजील को भी कहा गया, वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंजलल्लाहु फी, अब मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, और हम सब के लिए ये है कि फाहकुम बैनहुम बिमा अंजलल्लाह, तो आप फैसला कीजिए इनके दरमियान साथ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ने, ए नबी आप इस कुरान के जरिए अब फैसला करेंगे, ये जब आपके पास आए फैसला कराने के लिए जो भी लोग मुसलमान हैं या कोई भी, अब आपका काम ये है कि इस किताब के मुताबिक आपने फैसला करना है, ठीक है। अंजलल्लाह, देखें ये नाजिल की अल्लाह ने, और पीछे भी आया बीमा अंजलल्लाह बीमा अंजलल्लाह, तो ये कितनी दफा आ रहा है ना बीमा अंजलल्लाह, तो देखें ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ कलाम है। अब आप सोचे ना, वो ये हजरत इकरमा वाली बात आ जाती है ना कि जब वो मुसलमान हुए फिर कुरान पाक को खोलते थे फिर इसको पढ़ा करते थे ना तो रोने लगते थे, कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, इतनी उनको मोहब्बत आती थी ना इस कलाम के ऊपर, तो ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, अल्लाह का कलाम यानी इसकी निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ, हर चीज की किसी की तरफ निस्बत होती है ना, फलां का बेटा या फलां की चीज या फलां का घर या फलां का मोहल्ला या फलां का मुल्क, तो ये किताब की निस्बत किस तरफ है, अल्लाह की तरफ, इसकी और कोई निस्बत नहीं है। वला तत्तबे अहवा अहम, और ना आप पैरवी करें ऐ नबी इनकी ख्वाहिशात की, अम्मा जाए अकमिल हक, इसके बाद के आपके पास हक आ गया है, ये कुरान हक क्या है आपके पास, ये आ गया, अब आप किसी की ख्वाहिशात के पीछे ना चलें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाउज़ु बिल्ला आप तो किसी की ख्वाहिश के पीछे चलने वाले नहीं थे, तो फिर आपको क्यों ये कहा गया, इसलिए कि उम्मत को सुनाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इसके किसी के पीछे चलने वाले थे, कि जो वो अपनी ख्वाहिशात चाहते थे उसके मुताबिक मोड़ना चाहते थे तो आप तो नहीं चलने वाले थे, लेकिन उम्मत को रहती दुनिया तक एक मैसेज दे दिया गया कि अल्लाह ने अपने नबी को भी ये बात फरमाई है तो तुम लोग सुन लो, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब एक तरफ हक होगा और एक तरफ दूसरों के तरीके या दूसरों की ख्वाहिशात या दूसरों की जो भी उनकी अट्रैक्शंस हैं उनकी तरफ से वो होंगी। तो आज भी आप देख लेना कितना अट्रैक्टिव हैं उनके तरीके हमारे लिए। और तो और छोड़ लें, क्रिसमस आज मुसलमानों को कितना अट्रैक्ट करती है। आज मुसलमान उनके सेंटा से, उनके क्रिसमस ट्री से, उनके इस दिन से इतने फैसिनेट हो गए हैं कि वो बेचारे, उनका बस नहीं चल रहा कि अब हम चर्च भी चले जाएं, अब और तो कुछ नहीं रह गया कि घरों में ये भी लाके लगा लेना और बस, पता नहीं क्या सेंटा भी बन के बैठ गए हैं और गिफ्ट भी हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। वो तो हम सूरह बकरा में पढ़ रहे हैं ना कि वो तो आपसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके ऊपर तरीके पे ना आ जाए। तो ए नबी, आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। और ये कह के हम सबको बता दिया गया, मैं और आप अपना खुद सोचें कि अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, जो उनके तरीके हैं, जो उनका रास्ता है, जिस तरह वो चाहते हैं कि तुम चलो वैसे नहीं चलना। वो तो चाहते हैं आप मादर पितर आजाद हो जाए जैसे वो हैं, जैसे उनके कोई एथिक्स नहीं है, कोई जिंदगी के कोई मायार नहीं है, बेलिबास फिर रहे हैं, ना किसी की शर्मो हया है, ना कोई रिश्तों का पास है, क्या क्या चीजें हैं ना। एक बिल्कुल ऐसी सोसाइटी जो कि गॉडलेस सोसाइटी है, वो कहते हैं आप भी ऐसे ही बन जाए। तो अगर उनकी तरफ चले, उनके रास्ते पे चले, तो फिर क्या अंजाम होगा। याद रखिए, अल्लाह ताला को कोई बनी इसराइल के साथ कोई, अल्लाह माफ करे, कोई, वो भी अल्लाह के ही बनाए हुए बंदे हैं, अल्लाह का कोई उनसे कोई बैर तो नहीं है। वो भी अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहि सलाम की उम्मत है, जो कलीमुल्ला है, उनकी उम्मत है। तो जब अल्लाह ताला उनको इस चीज पर फरमाता है कि ये मग़दूब ही अलैहिम है, तो जो उन्हीं के रास्ते पे चलेगा, तो क्या वो अल्लाह के प्यारों में से हो जाएगा? वो उनमें से हो जाएगा जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें हो? जिनका रास्ता फॉलो करोगे वही बन जाओगे ना। तो उनकी ख्वाहिशात के रास्ते पर मत चलना, जबकि आपके पास हक है। क्या मेरे और आपके पास आज हक है कि नहीं है? ये कलाम मौजूद है ना, जो महफूज है, हम तक पहुंचा है। इसमें कोई बात, हम, हमारा ईमान है, इसमें एक लफ्ज, क्या एक हर्फ भी ना ऐड हुआ ना इसमें से निकला। तो इतनी जिनके पास ऑथेंटिक चीज मौजूद है अल्लाह की तरफ से, इससे बड़ा क्या उनके पास नेमत होगी कि ये कुरान हमारे पास, अल्लाह का कलाम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, अल्लाह के अल्फाज है ये। इसके बाद भी हमें दूसरों के तरीके अच्छे लगे हैं, वो जैसे कर रहे हैं, वो जैसे चल रहे हैं, वैसे ही हमने चलना है। लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक के लिए अल्लाह ने एक शरीयत दी हुई और एक रास्ता दिया, हर उम्मत को दिया। एक शरीयत यानी लॉ दिया, और मिनहाज, मिनहाज का मतलब रास्ता होता है, यानी एक उसको प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताया अल्लाह ताला ने। बाज ने कहा कि शरीयत से मुराद मसलन किताब है, और मिनहाज से मुराद रसूल का बताना है। जैसे हमारे लिए शरीयत से मुराद हो गया कुरान, और मिनहाज से मुराद होगी सुन्नत। हर एक को कानून भी दिया और उसको कानून को कैसे अप्लाई करना है वो रास्ता भी बताया। बोला उशा उम्मत वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सारों को एक ही उम्मत बना देता, आदम अलैहि सलाम के वक्त से ही, उस वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते और कुरान भी आ जाता और सारी दुनिया एक ही दीन के ऊपर चल रही होती। दीन तो समझ ले एक ही आया ना, इस्लाम ही था, लेकिन सारी दुनिया इसी कुरान के मुताबिक ही चल रही होती, एक ही उम्मत होती। भला के लिए अबलुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन अल्लाह ताला ने आजमाना है तुमको जो उसने तुम्हें अता किया। शुरू से आखिर तक एक ही चीज नहीं, देखें पैगाम जो बेसिक था वो तो तौहीद का सेम था, लेकिन हर एक को, मसलन नमाजें किसी की कितनी है, किसी की कितनी, रोजे का तरीका किसी का कितना है, किसी का कितना, और इस तरह के और जो ब्रांचेज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट सबकी हो गई अल्लाह ताला ने उतारी। तो इसमें अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ने आजमाना था हर एक को कि अब वो क्या करता है, क्या आने वाले नबी को मानता है कि नहीं मानता, क्या अपनी उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है या नहीं करता अपने नबी के जब वो आए। और देखिए हर जो जमाने में अल्लाह ने उनके हालात, उनके अहवाल के मुताबिक चीजें भेजी हैं, उनके मुताबिक कवानीन आए हैं, और ये वाला फाइनल है। जो पिछले कवानीन थे, आप खुद अंदाजा कीजिए, इंसान को भी इवॉल्व होने में टाइम लगा है। आज का जो कानून है, वो शायद 5,000 साल पहले के इंसान को दिया जाता तो उसकी समझ में भी ना आता। तो इंसान भी अकली तौर पे, शौरी तौर पे इवॉल्व हुआ है। तो अब ये फाइनल चीज जिस वक्त आई, जब एक इंसान एक स्टेज पे पहुंच चुका था समझने के, तो ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। अल्लाह चाहता तो शुरू से ही सबको एक कर देता। अल्लाह ने आजमाया, फस्तबिकुल खैरात, तुम बजाय इसके कि इख्तलाफात में पड़ो, वो फलां ऐसा वो फलां ऐसा, तुम अपना फोकस किस पे रखो, नेकी में बढ़ने में। इस्तिबाक क्या होता है? दौड़ना और दूसरे के मुकाबले में दौड़ना, आगे बढ़ना दूसरे से। इतना एक तो होता है ना, हाँ नेकी कर ली, एक है दूसरों के मुकाबले में आगे बढ़ना, इतना तेज दौड़ना कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। वो कितनी तेज दौड़ रहा है, मेरा साथी कितना आगे चला गया, मुझे इससे भी आगे जाना है। ये होता है इस्तेबाक। एक रेस होती है ना, जैसे रेस में कोई ये नहीं होता कि कोई जिस मर्जी स्पीड से चल भागे। रेस में क्या होता है, वो दूसरे को देखता है, वो इतना दौड़ा, मैंने इससे आगे जाना है। वो क्या तीसरा कहता है, मैंने उससे आगे जाना है। दूसरे के साथ मुकाबले के अंदर दौड़ रहे होते हैं। नेकियों में मुकाबले में दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं नेकी में, वो इतना भी नहीं करता, मैं तो उससे बेहतर करती हूँ। यानी हम पीछे वाले को सबसे देखते हैं। यानी अगर मैं दौड़ रही हूं तो मैं कहूँ वो तो इतना पीछे रह गया, चलो मैं उससे तो आगे हूं ना, जो सबसे पीछे वाले को देखेंगे। और तुम्हें पीछे वाले को देखने को नहीं कहा, आगे वाले को देखने को कहा है कि तुम आगे वालों को देखो कि तुमसे आगे कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आइंदा के लिए ये मिसाल नहीं देनी, लो हम तो फिर भी कम से कम नमाज तो पढ़ते हैं ना, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं तो फिर भी हिजाब तो ले लेती हूँ, वो तो ये भी नहीं करते। ये नहीं करना हमने, हमने नेकी में आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तभी हम तेज और कदम बढ़ाएंगे। और अगर हम पीछे वालों को देखते रहे तो फिर जो स्पीड है उससे भी जाएंगे, क्योंकि वो तो काफी पीछे ही है ना, हम तो उससे तो बेहतर ही है, तो चलो ठीक है हम उससे भी कम स्पीड कर लेते। अल्लाह अकबर। तो दुनिया के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? अपने से नीचे की तरफ देखें, और दीन के मामले में अपने से ऊपर की तरफ। इससे हमारे अंदर शुक्र गुजारी आएगी कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा नेमते हैं दूसरों के मुकाबले में। और दीन के मामले में जब हम अपने से आगे देखेंगे तो हम और तेज दौड़ेंगे नेकियों में। इलल्लाह ही मर्जिउकुम जमीयान, याद रखना अल्लाह की तरफ तुम सबको लौट कर जाना। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तो फिर वो तुम्हें बता देगा जिन चीजों में तुम इख्तलाफ करते रहे। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते, यहाँ पे झगड़े रहेंगे, यहाँ पे कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। आप अपनी फोकस नेकियों पे लगाओ, उनके साथ झगड़ने में नहीं। बाज़ों ने मानना होता ही नहीं, चाहे आप जितना भी कह लें आप लें, लेकिन अपना फोकस अगर नेकी करने पे लगाया ना, तो फिर तो आप ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अपना फोकस इन्हीं के साथ झगड़ने में लगाए रखेंगे तो कुछ हासिल इसका नहीं होना। तो अल्लाह ने एक दिन फैसला कर देना, उसका इंतजार करो। वَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, और ये कि फैसला करो इनके दरमियान साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा से ताकीद की जा रही है, और हम सब के लिए मैसेज है कि फैसला होगा तो इस किताब के मुताबिक, ये हमारी हाकिम होगी, इसको हमने इमाम बनाना है। वला तत्तबे अहवाअहुम, फिर दोबारा मुसलमानों को ताकीद कर दी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पे कहा गया, लेकिन आपको कह के सबको समझा दिया गया। लोग जिस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे चलने के लिए नहीं खड़े हो जाना, तैयार हो जाना। सारे ही तो जा रहे हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, उनकी ख्वाहिशात पे ना चले, आप उनकी पैरवी ना करें। उस जमाने में वो क्या सोचते थे कि थोड़ा सा आप नरम पड़े, थोड़ा सा आप ये मान जाए, यहूदी कहते आप हमें ये हमारी ये बात मान जाए तो हम आपको मान लेंगे, आप हमारे इस चीज में फैसले कर दें तो हम आपको मानेंगे। नहीं, आपने उनकी ख्वाहिशात पे नहीं चलना। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि ये अमल में दूर, ये अपने दीन से दूर, ये मगदूब हो गए, अल्लाह ताला का गजब है इनके ऊपर, अल्लाह का गुस्सा है इनके ऊपर, उनके पीछे चलोगे तो क्या होगा? वाहदर, हम इनसे होशियार रहे। क्यों? क्यों होशियार रहें, क्यों चुकन्ने रहें इनसे, क्योंकि देखें कई लोगों का आप उनकी जो उनके इख्तलाफात हैं या जो उनकी बातें हैं उसका जवाब नहीं दे सकते, वो आपको हमेशा कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनसे होशियार रहने को कहा गया, उस वक्त उनका ये किरदार था ना, जैसे ये अब हमने पढ़ा है कि सम्माउन लिल्कतिब करते थे, तहरीफें करते थे और चीजें करते थे, इनसे आप मुहतात रहे, यानी इनके साथ अब आपका क्या तरीका कार होना चाहिए, हमको बदल तो नहीं सकते, उन्होंने अपनी हेरा फेरियां तो छोड़नी नहीं, उन्होंने अपने काम तो नहीं छोड़ने, तो फिर क्या करें, मुहतात रहे इनसे। इससे हमें हमें भी पता है एक लेसन मिलता है कि वो लोग जो इस तरह के जरा शर पसंद होते हैं ना, अब आप उनसे काटें भी तो फिर भी मसला, क्योंकि वो शर पसंद है, वो उन्होंने फिर आपको भी फिर भी कुछ नुकसान देना है, अगर आप उनसे जोड़े तो तब भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो तो बहुत आपको नुकसान देने वाले हैं। तो फिर उनसे मोहतात रहने का कहा गया, रवैया जो होना चाहिए फिर मोहतात रहें, केयरफुल जिसको कहें। वाह दर हूं और होशियार रहे उनसे, यफ्तिनू का कि वो फितने में ना डाल दे, अम्बाद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि, किस मामले में कि वो आपको इसके बारे में रोक ना दे, रोकने की कोशिश ना करें अल्लाह के अहकामात से दूर ले जाने की, जो अल्लाह ने नाजिल किया है आपके ऊपर उससे इसके बारे में कोई इन्फ्लुएंस ना करने की कोशिश करें। क्या ना है, शैतान इसी तरह तो काम दिखाता है कि वो फिर ऐसे लोगों के थ्रू, जाहिर है शैतान इंसानों में भी होते हैं, ऐसे लोगों के थ्रू लाके इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, फिर इंसान अल्लाह के दीन से ही हटने लगता है उनकी कंपनी में बैठ के या उनकी बातें सुन सुन के। तो होशियार रहने का कहा गया है, अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने, आपने समझ के रहना है, संभल के रहना है ऐसे लोगों के साथ, उनकी हर बात भी कबूल करने बैठ जाना, हाँ ये तो ये कह रहे थे, ये तो नहीं, चौकन्ने रहे क्योंकि ये आपको हटाएंगे इससे, ये आपको फितने में डालने की कोशिश करेंगे आपको, यानी हम अपनी अगर बात करें तो हम अपनी जिंदगी में जब चलना चाह रहे होते हैं दीन पे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस उनका एम क्या होता है, हटाने का, शकों को शुभात पैदा करने का, कुछ ऐसी बातें कर देंगे जिनसे इंसान का दिल ही ऐसा हो जाएगा पता नहीं मैं सही भी कर रही हूं कि नहीं। तो होशियार रहना है ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी बड़ी संभल के गुजारनी है। फहिन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें आपसे, वो आपसे नाराज हो गए हैं, वो आपके पास अब फैसले ही नहीं कराने आते, या फालम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबादिज़ुनूबिहिम, अगर वो आपको मानते नहीं, मुसलमान भी नहीं होते ना, आपकी बात को कुछ मानते हैं ना, आपकी शरीयत की तरफ आते हैं, इसके फैसलों को भी कबूल नहीं करते, आपके बताए हुए फैसले वो मानते नहीं है, तो यानी इस मामले में भी मुंह मोड़ते हैं और वैसे भी मुंह मोड़ते हैं आपसे, तो अल्लाह ताला ने समझ लें कि अल्लाह ने यही चाहा है कि इनको अल्लाह मुसीबत में डाल दे इनके अपने गुनाहों की वजह से, यानी दे डिजर्व इट, वो नहीं मुंह मोड़ रहे, अल्लाह ने ही इनको मोड़ दिया, ये एक मुसीबत ही है कि इंसान ईमान से महरूम रह जाए, रसूल के होते हुए उनकी जात से फायदा ना उठा सके और अपने चक्रों में लगे हुए। वह इन कसीर अमिन अन्नासी लफासिकून, अब ये यहूद की नहीं सिर्फ बात, ये यूनिवर्सल एक बात है कि बेशक बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, लफासिकून, नाफरमान होते हैं, लोगों की अक्सरियत फासिक, मैंने आपको क्या बताया, बागी भी है, बस मैंने नहीं करना, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है, आई डोंट केयर, ये वाला जो रवैया होता है ना ये फासिक का होता है, अक्सरियत लोगों के फासिक है, वो कहते हैं हमें कौन डिक्टेट करेगा कि हमने ये करना है, ये पहने, ये खाएं जी, ये पिए जी, ये ऐसे करें, सुबह को इतने बजे उठें, फिर वुजू करें, फिर नमाज पढ़ें, फिर फलाना करें, ये तो बहुत ज्यादा है, ये क्या बात हुई, हमारी तो अपनी मर्जी है भाई, मैं करूंगी नहीं करूं, मेरा दिल करेगा तो करूंगी, दिल करेगा तो नहीं करूंगी, तो आप तो दिल की पूजा करते हैं, फिर आपके खुदा की तो नहीं पूजा कर रहे, आप तो दिल की मर्जी मानने वाले हैं, हमारा दिल करेगा तो करेंगे, हम नहीं किसी के कहने पर करते, किसी का तो कहना है ही नहीं, तो कुरान कहता है, तो ये देखें, यहां से हमें पता चलता है कि अक्सरियत मेजोरिटी को अपना क्राइटेरिया ना बनाए किसी चीज में भी, कि ये मेजोरिटी कर रही है ना, सब कर रहे हैं तो फिर हम भी कर लेते हैं। मेजोरिटी तो फासिक है, ये कुरान का फैसला है। अक्सर लोग फासिक है, अक्सर लोगों को आप देखेंगे वो अल्लाह के हुक्मों को में नहीं चलना चाहते, क्योंकि इसके अंदर उनको लगता है हम रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, हम कैद हो गए हैं, हमें किसी की माननी पड़ेगी, हमने तो अपने दिल की माननी है, हम तो आजाद हैं, हमारी अपनी मर्जी क्यों ना चले। तो थोड़े दिन के लिए अल्लाह की मर्जी मान जाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मर्जियों के मुताबिक तुम्हारे लिए करेगा। फिर तो तुम कुन कहोगे, जन्नत में तो आप ही कुन कहेंगे कि ये हो जा तो वो हो जाएगा उसी वक्त, आपने फल खाना है तो वो उसी वक्त सामने आ जाएगा, आपने कहीं जाना है तो उसी वक्त पहुंच जाएंगे, आपका दिल ये कर रहा है तो वैसा ही उसी वक्त हो जाएगा। जिंदगी ये तो मर्जियां चलाने की जगह नहीं है, जन्नत में मर्जियां चलेंगी, फिर हमेशा की मर्जियां होंगी। कितने मजे की बात है ना कि ये तो छोटी सी जिंदगी है, इसमें अल्लाह की मान लोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारी मर्जी होगी। या ये चाहते हो कि अभी ये थोड़ी दिन के लिए तुम्हारी मर्जी हो जाए तो फिर हमेशा के लिए कैद है? कहाँ चाहते हो कैद? और ये तो कैद है भी नहीं, कैद उसको लगती है ना असल में जिसने इसको गले का फंदा समझा हुआ। उसके लिए कैद नहीं है जो अल्लाह की हदूद में रह के चलना चाहे, उसके लिए कैद नहीं। जैसे एक बकरी को आप बांध दें, आपने उसको रस्सी से बांधा हुआ मसलन, आप वो मसलन 10 मीटर की रस्सी है, आप वो 12 मीटर पे जाना चाहती है तो उसको तो रस्सी फंदा ही लगेगी ना कि क्या मुसीबत मेरे गले में फंस गई, मैं 12 मीटर पे जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो 8-9 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे चलती भी रहेगी, उसको कोई फंदा नहीं लग रहा क्योंकि वो उसके अंदर ही रहना चाहती है। जब आप तोड़ाना चाहते हैं ना अपने आप को, दूर भागना चाहते हैं, तो जाहिर है ये फंदे ही लगेंगे फिर। और जब आप अल्लाह की हदूद जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रहोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेजोरिटी फासिक है, मेजोरिटी नाफरमान है, मेजोरिटी हदों से निकलने वाली है। और आप दुनिया में मेजोरिटी को देख लें, खुद ही देख लें, आपको खुद पता चलेगा, एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, एक आप अपने गली मोहल्लों में, आप अपने खानदानों में देख लें कितने लोग हैं जो कि अल्लाह के बड़े फरमाबरदार हैं। अल्लाह अकबर, आफा हुक्म अल जाहिलियत ये बगून, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए रब तेरे। अल्लाह ताला पूछते हैं तुम्हें अभी भी जाहिलियत के तरीके पसंद है, वो फैसले पसंद है जो जाहिलियत के? अल्लाह ने तो तुम्हें इस्लाम के तरीके दिए, इस्लाम के फैसले दिए, इस्लाम के अहकामात दिए जो अल्लाह ने खुद दिए हैं, उसकी तरफ से हैं, तुम्हें कौन से पसंद आते हैं? क्या तुम उनको चाहते हो जो गैर इस्लामी है? जाहिलियत के कौन से, हम कौन सा जमाना जाहिलियत कहते हैं जो इस्लाम से पहले का था, है ना? तो आज भी वो जाहिलियत है जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, वो जाहिलियत है जो इस्लाम से कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, वो जाहिलियत है। तुम्हें अल्लाह के फैसले नहीं पसंद, तुम्हें औरों के फैसले पसंद है, तुम्हें जाहिलियत के फैसले पसंद है। और जाहिलियत ये नहीं होती कि हम कहें हमने तो PhD कर ली, मैं तो जाहिल नहीं हूं, मेरे तो तरीके जाहिल नहीं हो सकते क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, फलां से मेरी डॉक्टरेट की डिग्री है, मेरा फलां, मैं इतनी बड़ी साइंसदान हूं या क्या? देखें, इंसान पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है जब वो अल्लाह को नहीं पहचान सकता, जब वो अल्लाह ताला की अजमत को नहीं जानता, वो जाहिल ही है। जिसको अल्लाह के बनाया हुआ कानून पसंद नहीं है ना, वो जाहिल ही है। अल्लाह ताला पूछते हैं, एक ताज्जुब है ना इसके अंदर कि हैरत की बात है, यानी एक क्या तुम्हें अभी भी वो ही पसंद है इतनी? यानी आप सोचें किसी को आप क्या बताऊं, किसी को आप कोई मेंशन दे रहे हो, कोई बहुत बड़ी आला चीज दे रहे हैं और वो गिर जाए चांदे के टुकड़ों के ऊपर, कहे कि मैंने यही ले लेना है, तो आप पूछेंगे नहीं क्या उसके मुकाबले में तुम्हें ये पसंद है? क्या इंसान की अकल और उसकी समझ और उसके बनाए हुए तरीके और उसके बनाए हुए कानून और उसके बनाए हुए फैसले, और कहां अल्लाह रब्बे जुल जलाल जो अलीम है, हर चीज का इल्म उसके पास है, जिसके पास हिकमत है हर चीज की, हिकमत जो खबीर है, और जो रहमान और रहीम है, जो तुमसे बहुत रहम करने वाला है, जो अलवदूद है, तुमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है, उसने ये अहकामात दिए हैं। तुम इनको छोड़ के दूसरे तरीके पसंद करते हो, तुम्हें उनके वो वेज अच्छे लगते हैं, तुम्हें किसी चीज में भी इस्लाम का तरीका नहीं पसंद, ना पहनने ओढ़ने में, ना खाने पीने में, ना तिजारत में, ना अपनी शादियां करने में, ना अपने और किसी भी मामले के अंदर, ना अपने ताल्लुकात रखने में, किसी चीज में भी नहीं पसंद है इस्लाम। हाँ नहीं, जहां पे मेरी अपनी पसंद होगी वहां का पसंद है, जो मुझे भी पसंद आएगा। तो फिर तुमने अल्लाह को क्या खुदा बनाया, तुम तो अपनी पसंद के ही बंदे हो ना फिर। तो वो पूछा जा रहा है, क्या जाहिलियत के फैसले आपको अच्छे लगते? तो एक तो इल्म ना होना जाहिलियत है, एक इल्म हो के भी कि दुनिया का सारा इल्म पढ़ लिया लेकिन इसमें अभी भी जाहिल है कि अल्लाह का क्या कानून है और क्या निजाम है और क्या कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, और अल्लाह ताला के ये अस्माए हुस्ना को जानना कि उस रब ने ये कानून भेजा है, ये सिर्फ कौन कह सकता है जिसके पास यकीन हो। इसीलिए आ गया है वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, अल्लाह से ज्यादा किसका फैसला अच्छा हो सकता है। लेकिन हर कोई ये बात नहीं कहेगा, लिकौमी यूकिनून, सिर्फ वो ही लोग कहेंगे उनके लिए ही अल्लाह का फैसला सबसे अच्छा है जो यकीन रखने वाले हैं, जिनको यकीन है कि मेरा रब हर हिकमत जानता है, मेरा रब है जो हिफाजत करने वाला है हर चीज की, मेरा रब है जो जानता है, जो बहीना आईदी है, जो आगे है और जो पीछे है, जो ऊपर है और जो नीचे है, वो हर चीज का भेद जानता है, जो बिजात सुदूर भी जानता है, जो सीनों के भेद हैं उनको भी जानता है, जिसके इल्म से ऊपर किसी का इल्म नहीं है, जिसकी समात से ऊपर किसी की समात नहीं है, जिसकी बसारत से ऊपर किसी की बसारत नहीं है, जो हर चीज से बाखबर है, और जिससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, उससे ज्यादा किसका फैसला अच्छा हो सकता है? ये कौन बात कहेगा, ये जो यकीन रखते हैं इस बात के ऊपर। वरना तो बाकी सब लोग क्या कहेंगे, वो नहीं, ये नहीं, अल्लाह का फैसला नहीं, इसमें नहीं हम चल सकते, बाकी सबको वो जाहलियत के ही पसंद आएंगे। तो हम क्या कहेंगे इसमें से, हम ये कहने वाले होंगे ले जो ये यकीन रखने वाले लोग कहते हैं कि मन आसनु मिन अल्लाह हुक्मा, अपनी शादियों पे ये कहा करेंगे अल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन है, बढ़ के कौन है फैसला करने में, अल्लाह ने मेरे लिए ये फैसला कर दिया बस मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है, अल्लाह से बढ़ के कौन मेरे लिए फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, मैंने क्या खाना है और क्या पीना है, मुझे तो अल्लाह का फैसला अच्छा लगता है और वो मेरा हमदर्द है, वो मेरा मालिक है, उससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए कौन सोच सकता है। अरे दुनिया के लोगों के लिए हम सोच लेते हैं, अब हम माएं अपने बच्चों को कहती हैं कि बेटा हम तेरी माँ से ज्यादा तेरा कौन हमदर्द हो सकता है, बेटा मेरी माँ से ज्यादा कौन तेरे लिए अच्छा सोच सकता है, बच्चा कहता नहीं, आप तो मुझे ये कहती हैं, आप तो मुझे सुबह सवेरे उठाती हैं, आप तो मुझे स्कूल भेजती हैं, आप मैं नींद में होता हूँ मेरा मुंह धोती हैं। अब बच्चे को लग रहा है कि माँ जो है ना वो उसके साथ बड़ा जुल्म कर रही है, पढ़ने को कह देती हैं, मेरा तो दिल चाहता है मैं गेम खेलूं। तो अब वो माँ जो है ना वो कहती है कि मेरे से ज्यादा कौन तुम्हारा हमदर्द होगा, यही दर्द है यहाँ पे कि अल्लाह से ज्यादा तुम्हें औरों के पसंद है, अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा कौन हमदर्द होगा। लेकिन इस बात को समझ हर कोई नहीं सकता, वो यकीन रखने वाला ही समझ सकते हैं, और अल्लाह हमें इन यकीन रखने वालों में शामिल फरमा दे कि हमें ऐसा यकीन हो कि हम भी कहें सीना ठोंक के किसी भी बात पे, जो भी अल्लाह का हुक्म आए, मुझे समझ आए ना आए, मगर वमन आसन मिन अल्लाह ही हुक्मन, तब बात होगी, पता चलेगा कि आप अल्लाह वाले हैं। बाकी अगर ये बातें नहीं है और ये नहीं कहते आप और बस मैं अल्लाह वाली, मैं बड़ी नेक, मैं फलां, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। अगर आपके अंदर ये यकीन ही नहीं है कि मेरे अल्लाह से बेहतर कौन फैसला कर सकता है, तो जब ये यकीन हो ना फिर जुबान से खुद ब खुद ये निकलेगा। तो अल्लाह हमें इनमें बना दे, हमें ऐसा यकीन आ जाए, पुख्ता पक्के हो जाए इस बात पे। दुनिया जहान चाहे हमें कह रही है नहीं जी ये बड़ा अच्छा आजकल का ट्रेंड है, ये बड़ी अच्छा आज इन है, ये फलानी चीज आज बड़ी चल रही है, और फलाने ने भी ऐसा किया, फलां भी देखो ये करता है, नहीं मुझे नहीं इससे इसकी परवाह, मेरे तो अल्लाह ने मेरे लिए फैसला ऑलरेडी बता दिया है, और उससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए कौन फैसला कर सकता है। बस ये यकीन वाले का की बात होती है, और ये उसका दिल कहता है। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.